रेडियो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत। और श्रोताओं, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपका इंतजार हो रहा है आज खत्म। और इंतजार रहता है आप सभी को कि आज के हमारे सप्ताह के श्रोता हैं कौन। तो जी हाँ, आज के हमारे सप्ताह के श्रोता हैं कहाँ से? हमारे सप्ताह के श्रोता हैं आज ग्राम छुरी, यानी कहाँ? कटघोरा के पास। जी हाँ, कटघोरा के पास जो है छुरी, जो कोसा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो ये हिंट जो मैंने दिया है ग्राम के संदर्भ में और जगह के संदर्भ में, और सबसे बड़ी बात मैंने कही कि कोसा के संदर्भ में, तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्राम छुरी से हमारे कौन से ऐसे श्रोता हैं जो हमारे आज के बने हैं सप्ताह के श्रोता। तो जी हाँ, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन से हमारे श्रोता हैं जो आज हमसे करेंगे बात चीत और सुनेंगे हम उनकी पसंद का गीत। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना परिचय दीजिए मितान जी।
मितान भाई, राधे राधे, राम राम।
राम राम
भैया, मैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, छुरी, कटघोरा जिला कोरबा से।
वाह, तो श्रोताओं आपने सुन ही लिया कि हमारे सप्ताह के श्रोता कौन है। जी हाँ, लक्ष्मण सिंह ठाकुर श्रोता जगत में एक जाना माना नाम है, और हमारे नए हो या पुराने हो, श्रोताओं के बीच में एक ऐसा नाम है ये कि जो छुरी बोलते ही एक नाम आ जाता है, लक्ष्मण भैया का। जी हाँ, तो हमारे लक्ष्मण मितान जी बने हैं हमारे आज के सप्ताह के श्रोता। तो लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में।
अब जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद
जी। अब हम आपसे आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, साथ ही आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में सारी चीजें अब हम आपसे जानना चाहेंगे, बताएं।
जी, मेरा नाम तो लक्ष्मण सिंह ठाकुर है भैया जी, और मैं नगर पंचायत छुरी कला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा तो यही हुई है, और पत्रकारिता के साथ साथ मैं कृषि कार्य में लिप्त हूँ
जी,
और मेरी पढ़ाई लिखाई है आपका ITI डिप्लोमा। और हम लोग चार भाई हैं
जी,
और चारों भाई का हम लोग का शादी हो चुका है।
वाह,
और सभी एक ही परिवार, एक ही स्थान में, एक ही छत के नीचे सब परिवार सामूहिक रूप से रहते हैं हम लोग।
वाह वाह वाह,
और छोटा सा धंधा भी है चारों भाई का हम लोग का।
जी जी, बताएं बताएं।
मेरा तो आइसक्रीम का है, और छोटा वाला भाई का ऑटो पार्ट्स का है, और ऑटो सर्विसिंग सेंटर भी है, और जूते का दुकान भी है।
वाह,
तो चारों भाई को अलग अलग दुकान है। मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की और दो लड़का।
नाम क्या है?
हाँ, योगेश्वर सिंह मुनु और धीरज सिंह कान्हा, और बेटी का नाम है हरी प्रिया।
वाह,
और तीनों पढ़े लिखे हैं, और तीनों शादी योग्य है भैया।
तीनों की शादी
योग्य है, शादी करना है मेरे को।
वाह वाह, आपकी आवाज से लगता नहीं कि आप इतने बड़े बच्चों के पिता हैं।
जी 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 जी
जी, बताएं आगे बताएं।
और भैया, कृषि के साथ साथ पत्रकारिता भी है मेरा। और पत्रकारिता लेखन, कविता, गीत, गजल, और सबसे ज्यादा शौक मेरे को रेडियो सुनना है भैया। मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, रेडियो ही सुनता हूँ मैं। बचपन से ही मेरी आदत है रेडियो सुनने का, और फरमाइशी भेजने का। मेरे पिताजी टीचर थे, और टीचर के उस समय भैया टीवी भी नहीं होता था, कोई यांत्रिक कुछ नहीं होता था, रेडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलती थी हम लोग को। और चुनाव हुआ, समाचार हुआ, उसी से मिलते थे। पिताजी बहुत शौकीन थे रेडियो का, और टीचर थे तो रेडियो के समाचार सुन सुन के सुनते थे, और कुछ कुछ जानकारी लेते थे। तो उन्हीं से मेरे को ये रेडियो सुनने की प्रेरणा मिला भैया।
वाह,
और उसके बाद शौक बढ़ता गया मेरा भी। पिताजी कम से कम 20-25 रेडियो खरीद कर बिक्री कर चुके, और खरीदते उस समय भैया रेडियो का राशन लगता था।
अच्छा,
एक जमाने में राशन लगता था। हाँ भैया, उस समय इतने रेडियो मेरे पिताजी खरीदे, जेट किंग, मर्फी, फिलिप्स, पैरामाउंट, जितने भी रेडियो सब चला चुके थे वो।
अच्छा,
आज भी वो रेडियो, दो चार रेडियो मेरे पास पड़ा हुआ है घर में। निशानी के रूप में।
अच्छा,
उसी समय से मेरे को फरमाइशी सुन भेजने का शौक बढ़ गया फिर। तो फिर मैं रायपुर से स्टार्टिंग किया। उस समय रायपुर में हमारी मम्मी सुनती थी घर आंगन, और घर आंगन में पत्र भेजती थी, उसी को देख करके मैंने शुरू किया। और उस जमाने में बांस गीत चलता था सोमवार को।
जी जी,
सोमवार को 6 बजे या 6:05 बजे कुछ बांस की चल रहा था, लोग सुनने के लिए हमारे घर में बैठे रहते थे।
अच्छा।
हाँ, तो बाबू जी चालू करते थे पिताजी, उसके बाद फिर वो बांस की सुनने के बाद खाना वाना खाने जाते थे। तो फेमस था बांस की, तब तो पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे को इतना ये नहीं है
जी जी,
लेकिन उस समय का बांस की सुनने के लिए हर सोमवार या मंगलवार को आता था वो। और रायपुर से आपका दो घोषक थे, बहुत फेमस थे, जो इस पहाड़ों के बेचारे लोग, एक लाल लाल राम कुमार थे और एक मिर्जा मंसूर जी।
जी 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 हाँ,
उनकी आवाज बुलंद और समाचार पढ़ने में एक नंबर का, हर चीज में लगे थे।
जी जी जी।
और उस समय गायक कलाकार मोहम्मद रफी कहा जाए, छत्तीसगढ़ का भैया शेख हुसैन।
जी शेख हुसैन भैया जी,
मोहम्मद रफी कहिए उसको।
जी बिल्कुल सही,
बहुत चलता था उनका गाना जो है। तो उसी समय से मेरे को, उसके बाद फिर फरमाइशी लाइन में बढ़ता गया, फिर उसके बाद में एशिया का रेडियो स्टेशन SLBC सिलोन से जुड़ गया मैं।
वाह गुड।
तो फिर हाँ, सिलोन से जुड़ने के बाद फिर श्रोताओं से मिलना जुलना हुआ, श्रोताओं से जान पड़ते, तो उस समय पत्र माध्यम से जुड़ते हम लोग लिखा पढ़ी करते थे भैया। कोई कोई टेलीफोन कुछ नहीं था ज्यादा, तो पत्र के माध्यम से एक दूसरे से हम लोग जान पहचान बनते थे। उसके बाद धीरे धीरे श्रोताओं जगत फिर मेरा पहचान बनते गया
जी,
और रेडियो सिलोन फिर मेरा शुरू हुआ फिर।
वाह
हाँ जी,
बहुत
और उस समय बिना गीत चलता था, उसपे मैं स्लोगन भेजा भी था, तो उसपे इनाम भी मिला था मेरे को।
अच्छा
जी। और इसी श्रोता जगत में जुड़ करके मैं कुछ समय बिलासपुर में सम्मेलन भी कराया था, श्रोता सम्मेलन।
बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है। और मैं एक मिनट यहाँ रोकूंगा लक्ष्मण भैया आपको।
जी भैया,
क्योंकि ये सम्मेलन की बात चली, तो सम्मेलन की बात भी अच्छी खासी लंबी है और बहुत अच्छी बात है, तो हम ये बात आपसे जरूर करेंगे और इस बारे में भी जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपकी पसंद का पहला गीत सुनना चाहेंगे।
पहला गीत मुकेश की आवाज में भी है, चल अकेला गीत है
मुकेश जी के स्वर में। लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये पहला गीत।
चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।
तो इस मधुर से गीत के बाद स्वागत आप सभी का श्रोताओं हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में। और हम आपको बता दें कि आज हमारी बातचीत हो रही है छुरी कटघोरा के हमारे जाने माने श्रोता लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी से। तो लक्ष्मण जी
जी,
इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे आपके बारे में, और इसी बात के दौरान बात चली थी श्रोता सम्मेलन की, एक जो आप बता रहे थे, तो हम पूरे विस्तार से जानना चाहेंगे कि इस श्रोता सम्मेलन में आपने किस तरह से इसका आयोजन किया, किस तरह की भागीदारी थी लोगों की, मतलब संपूर्ण पूरी जानकारी आप हमें।
जी जी, श्रोता सम्मेलन के लिए भैया मैं वहाँ बिलासपुर कराया था, बहुत सारे श्रोताओं का मेरे को सहयोग मिला था।
जी जी,
सबसे ज्यादा मेरे को सहयोग भड़ापारा का सोहन जोशी और हरविंदर चावला जी का सहयोग मिला था।
जी जी,
जिनका मैं आसान मंदिर समझ, उनके दोनों के बदौलत मैं वहाँ कराया था।
जी जी,
और श्रोताओं से मिला था मेरे को, लेकिन वो लोग ज्यादा मेरे को सहयोग किए थे।
जी जी, किस तरह का सहयोग उन्होंने किया था ये भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे।
जी भैया, वो लोग खाने पीने से लेकर के और लेन देन के लेकर के प्रमाण पत्र सील्ड बेल्ट सब वो खरीद के ला के दिए थे मेरे को।
जी जी, अच्छा,
तो ये मेरा सहयोग वो लोग दिए।
जी जी जी, वाह।
क्योंकि उस श्रोता सम्मेलन में मेरे को पहले बस गया जरूर था श्रोता सम्मेलन भाग लेने के लिए, बहुत सारे में गया, लेकिन ऐसा मतलब अकेला था, इसलिए मैं उनसे सहयोग लिया और लोग सहयोग भी दिए भैया। और मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा सम्मेलन में ऐसा खर्चा आएगा, इतना होगा करके। तो उनके बदौलत मैं सफल हो गया मेरा कार्यक्रम। एक बार हुआ था भैया, मेरे को याद नहीं है सन, मेरे को दलवीर सिंह परमार जी आए थे बिलासपुर में।
अच्छा जी,
रेडियो सिलोन के उद्घोषक।
अच्छा,
बहुत भयानक सम्मेलन 3 दिन का था, उसमें धरमदास पासवानी जी थे बिलासपुर के आपका, और आपके बहुत इसमाइल रिजवी जी थे, और बहुत सारे श्रोता लोग बहुत राज्य से आए थे।
अच्छा अच्छा,
बहुत जोरदार सम्मेलन था वो।
जी 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 जी,
हाँ, तो उसी को देख करके और कई जगह श्रोता सम्मेलन देख करके मेरे मन में भी जगह कि मैं एक बार श्रोता सम्मेलन कराऊं करके। लेकिन क्या है, मैं कोरबा में करा सकता था, छुरी में भी करा सकता, लेकिन बिलासपुर में मेरे को सारी सुविधा मिल रही हो।
अच्छा,
तो मैं सुविधाओं को देख करके वहाँ कराया।
जी जी,
और बहुत श्रोताओं का सहयोग भी मिला और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप लोग का भी सहयोग था भैया वहाँ।
जी जी
हाँ, आप भी, आपका भी मिला और केंद्रों का, आशा आकाशवाणी बिलासपुर केंद्रों से भी सहयोग मिला मेरे को।
जी जी
रायपुर से भी मिला।
जी
सबके सहयोग से मैंने कार्यक्रम को सफल बनाया।
जी
जी
तो लक्ष्मण भैया, हम ये जानना चाहेंगे कि ये श्रोता सम्मेलन करवाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली, या ये आपको क्यों ऐसा लगा कि एक श्रोता सम्मेलन मुझे करवाना चाहिए?
क्योंकि भैया देखिए, मैं कई श्रोता सम्मेलन गया।
जी
मैं जाने के बिना रायपुर गया, भाड़ापारा गया, तो मेरे को अच्छा लगा। और उससे श्रोता सम्मेलन कराने से क्या है, एकजुटता बनता है श्रोताओं के बीच में। सभी श्रोता नए पुराने सब श्रोता आते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, कुछ जानकारी मिल जाता है, कुछ समस्या हो जाता है, कुछ न कुछ वहाँ मिलते रहता है बातचीत में। तो उसमें श्रेय हो जाता है सबका, मतलब जी जो भी ये है। तो उसमें हम लोग को इसलिए उसको देख करके मैंने कराया।
अच्छा।
जैसे भाड़ापारा में हुआ था सम्मेलन, तो वहाँ आपका वीर भारती का कमल शर्मा जी आए थे, राजेंद्र त्रिपाठी जी आए थे। तो बहुत वहाँ भी अच्छा चावला जी कराए थे सम्मेलन, उन्हीं को देख करके मैं बिलासपुर में कराया, समझ लीजिए, उन्हीं का प्रेरणा है, समझ लीजिए।
वाह
जी,
बहुत बढ़िया। तो इतना अच्छा आयोजन आपने श्रोता सम्मेलन के रूप में करवाया था लक्ष्मण जी, तो जी। अगर हम उस आयोजन के संदर्भ में कुछ चीजें अगर देखना चाहे, समझना चाहे, तो आपके पास कुछ यादगार के तौर पर है अभी?
यादगार के स्तर पर यही है भैया कि वहाँ पर मेरे को आकाशवाणी बिलासपुर से जो सहयोग मिला, हरिचंद वाधिकार जी से, सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी के उद्घोषक थे मेरे ख्याल से, के निदेशक कोई दूसरे थे, याद नहीं आ रहा मेरे को।
जी जी जी
तो उनका मिला सपोर्ट, महावीर जी का, इनका बहुत ज्यादा मेरे को सहयोग मिला। और उन्हीं उन लोग मेरे को प्रेरणा दिए, वहाँ जब परिचय किया जाकर कैसा सा मेरे को कराना है करके, वो लोग भी उत्साह के साथ मेरे को साथ दिए।
बहुत बढ़िया। तो लक्ष्मण जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी श्रोता सम्मेलन के संदर्भ में। तो अब इसी बात पर अब जल्दी से हमें बताइए अपनी पसंद का दूसरा गीत।
दूसरा गीत है भैया फिल्म दोस्ती का है, मोहम्मद रफी की आवाज में, राही मन में दुख की तीन तकियों सताती, दुख तो अपना
साथी। वाह वाह, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये दूसरा गीत।
दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए, कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में स्वागत आप सभी श्रोताओं का पुनः। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज हम बात कर रहे हैं अपने सप्ताह के श्रोता लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी से, जो है छुरी कटघोरा से। तो लक्ष्मण जी, स्वागत आपका। आगे बातचीत के साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि भाई छुरी जो आपका ग्राम है, इसके बारे में हमें बताएं।
गांव के बारे में बताऊं भैया, छुरी कोसा नगरी के नाम से फेमस है।
जी
कोसा नगरी के नाम से जाना जाता है, एक कुसगाईगढ़ के नाम से जाना जाता है। कुसगाईगढ़ किस लिए नाम जाना जाता है भैया, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ है समझ लीजिए।
जी जी
तो छत्तीसगढ़ पढ़ाइए, उसमें एक गढ़ कुसगाईगढ़ है।
अच्छा।
जो जमींदारी है ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, कुसगाईगढ़ जो है देवी स्थल है और पहाड़ी के ऊपर में है वो। और वहाँ कोई मंदिर नहीं है, जैसे चतुरगढ़ है आपका, मड़ा रानी है, तो ऐसे टाइप की वो भी है। तो उसपे एक मंदिर नहीं है, गुम्बज भर है खाली खुले आसमान में।
अच्छा
अच्छा सबसे बड़ी सब ये बात ये है भैया, वहाँ सब जगह आप देखेंगे लाल झंडा चढ़ता है, लेकिन वहाँ सफेद झंडा चढ़ेगा।
अच्छा
हाँ, और सर्दी का प्रतीक है बताते हैं लोग, जमींदार साहब बताते थे हमको, कि वो सफेद झंडा इसलिए चढ़ता है वहां कि वो शांति का प्रतीक है, इसलिए वहां सफेद झंडा चढ़ाया जाता है, एक साड़ी का झंडा बना के चढ़ाया जाता है वहाँ, सफेद साड़ी का।
अच्छा अच्छा
जी जी। और वहां पर आज पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है, पिकनिक स्पॉट भी है वो। और दूर दराज के लोग दर्शन के लिए भी आते हैं वहाँ, ज्योति कलश जलते हैं साल में 2 बार।
अच्छा।
चैत नवरात्रि में। तो हसदेव नदी किनारे में है, पहाड़ी के ऊपर में, और बहुत ही दर्शनीय स्थल है समझ लीजिए।
अच्छा, क्या नाम बताया था एक बार फिर से बताया हमें जगह का नाम?
कुसगई देवी, कुसगई गढ़ बोलते हैं उसको।
अच्छा, बहुत बढ़िया।
पहाड़ी के ऊपर में है, और वही के पास में आपका आजकल आप सुने होंगे छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल बन गया है सतरेंगा।
बहुत फेमस।
बहुत फेमस हो गया अभी।
जी जी जी।
उसकी जस्ट पीछे में वो है सतरेंगा जो है।
अच्छा।
कुसगई के पहाड़ी के पीछे में सतरेंगा है, पहाड़ी में जब चढ़ेंगे आप तो दिख जाएगा वो। तो वो फेमस स्थान के बगल में है वो।
अच्छा।
और कोसा कपड़े के नाम से बोलेंगे तो कोसा कपड़ा छुरी में ही बनता है।
जी जी जी।
और इसका प्रिंट और प्रिंट का और कढ़ाई के लिए ये बनारस और चंद्रपुर पहुंच भेजा जाता है
यहाँ
से। तो वहां से प्रिंट और जो भी प्रिंट बन के आएगा, जो भी कढ़ाई बनाई बन के आएगा, डिजाइन से वही तय करके आते हैं समझ लीजिए।
अच्छा अच्छा।
हाँ, और कम से कम 100 घर ऐसे है जो इसी कोसे में ही मतलब आश्रित है लोग।
अच्छा अच्छा।
सब परिवार जो है। और बिल्कुल उनका वही व्यवसाय है कोसा कपड़ा बनाना। कोसा शूटिंग शार्टिंग साड़ी क्या भी, साड़ी बनाने कपड़ा बुनने के बाद उसको आप साड़ी बना लीजिए, चाहे शर्ट बना लीजिए, चाहे आप कोट बना लीजिए, चाहे जैकेट बना लीजिए। तो यहाँ से आपका कोसा साड़ी इतना फेमस है कि अन्य राज्य अन्य प्रांत में भेजते है। भोपाल में उनका शोरूम है, रायपुर में है, अलग अलग स्थानों में यहाँ के महाजन लोग दुकान खोल रखे हैं वहाँ वहाँ। और कोसा साड़ी का व्यवसाय अच्छा है खासी, कोसा के नाम से बहुत फेमस है समझ लीजिए छुरी जो है।
जी जी। तो लक्ष्मण जी, हम यही जानना चाहेंगे कि जो छुरी है कोसा साड़ी को लेकर कि इतना ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ के लोग जो है मूलतः इसी तरह के काम में लगे हुए हैं, तो आपने इस व्यवसाय को या साड़ी या कोसा के साड़ी के संदर्भ में आपने क्यों नहीं चुना अपने व्यवसाय को?
क्या भैया, ये व्यवसाय देवांगन लोग ही कर सकते हैं इसको।
अच्छा जी।
उनमें इतना मेहनती है, इतना ये है कि क्या बताऊं, कि सुबह 6 बजे से या 5 बजे से लगे रहते हैं और शाम तक करते हैं काम लोग।
अच्छा।
और किसी कार्य भी करते हैं और किसी कार्य के अलावा ये भी काम करते हैं, तो इनके पूरे परिवार उसको जुड़े हुए। जैसे आज जो लोग कोसे का कीड़ा होता है, कीड़े को निकालते हैं उसको उबाल के, निकालने के बाद उसको धागा को निकालते हैं, तो एक दिन वो धागा निकालने में लग जाता है।
अच्छा।
दिन भर, तो दिन भर में धागा निकालने के बाद दूसरे दिन उसका बुनाई करते हैं।
अच्छा अच्छा।
तो ये काम अब तो खैर अन्य जाति के लोग भी यहाँ शुरू कर दिए हैं। सही कहना है आपका, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अब धीरे धीरे अन्य देवांगन से अलावा अन्य 5 के लोग भी अब जुड़ने लगे हैं इसमें बुनकारी में।
जी 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 जी।
तो हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का लगा, इसलिए हम लोग उसपे जुड़ नहीं पाए भैया। हम लोग, हमारे इसमें करने का मतलब क्षमता नहीं है समझ लीजिए।
अच्छा जी 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 जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जितनी तरह की मेहनत या जितनी तरह की लागत के साथ इसका पूरा मेहनत है, वो शायद आप नहीं कर पाते, इसलिए आपने इसे नहीं चुना। बहुत बड़े। तो लक्ष्मण जी, हम आपके माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे कि ये कीड़ा निकालने से लेके साड़ी बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको अगर हम देखना चाहें तो क्या वहाँ उपलब्ध है ऐसा कोई साधन?
या बिल्कुल आइए, स्वागत है। मैं जिन श्रोताओं को भी देखना चाहते हैं, जो श्रोता देखना चाहते हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए, आए और देखें, मैं दिखाऊंगा, उन लोगों को घुमाऊंगा।
जी जी।
आप भी आइए, आप पूरा टीम को ले आइए।
जी जी जी।
आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको घुमा दूंगा, दिखा दूंगा।
जी जी जी।
हाँ।
तो चूंकि जैसा कि आपने कहा कि वहाँ और बहुत सारे व्यवसायी है जो कोसा साड़ी का व्यवसाय कर रहे हैं,
जी।
तो रेट को लेकर के जो है कितनी पारदर्शिता है वहाँ छुरी में?
रेट के दर मूल्य को मत जाइए भैया, क्योंकि यहाँ पर कोसा साड़ी आपको 600 रुपए से लेकर के आपको 30,000 तक मिलेगा।
अच्छा
जी। लेकिन उसमें थोड़ा वैरायटी आ जाएगा अलग अलग। 600 रुपए लेंगे तो उसमें थोड़ा सा कोसा 3 प्रकार का होता है, एक प्योर कोसा रहेगा, एक रेशम कोसा और एक क्या बोलते हैं आपका सिल्क कोसा।
सिल्क कोसा। जी जी जी
जी। 3 को तो 600 रुपए आप लेंगे तो उसमें सिल्क कोसा मिक्स रहेगा भैया।
अच्छा।
सिल्क कोसा मिक्स करके उसको 600 बिक्री करेंगे, यही बनेगा वो भी।
हाँ हाँ हाँ।
लेकिन उसमें सिल्क रहेगा, कोसा कम रहेगा। अब प्योर कोसा कपड़ा लेंगे तो आपको 1200 रुपए मीटर से लेकर के मिलेगा समझ लीजिए कोसे कुर्ता का।
अच्छा।
और स्टार्टिंग 1200 से होकर के आप जितने मीटर के लिए उसी प्रकार से साड़ी को आप 1500 से लेकर के आप 6000 तक ले सकते हैं।
अच्छा जी 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 जी।
जितने ज्यादा क्वालिटी लेंगे उसमें कोसे का मात्रा ठीक रहेगा। कोसे में एक खासियत भी आप ठंड के दिन गर्मी के दिन में कोसे कपड़े को ज्यादा टाइम तक नहीं पहन सकते। प्योर कोसे को।
अच्छा
हाँ, और ठंड में पहनेंगे तब वो गर्मी पैदा करेगा।
अच्छा,
और सिल्क कोसा पहनेंगे तो आप गर्मी ठंड सब में पहन सकते हैं।
अच्छा ओके, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने।
हाँ, दोनों में अलग अलग वेरायटी है, क्वालिटी है। सिल्क कोसा है बनारस से आता है वो। तो बनारस साड़ी तब सिल्क कोसा के बनारस की साड़ी बनता है ना, बता दे रहा हूँ मैं आपको।
अच्छा,
तो बनारसी साड़ी हो जाता है वो।
जी जी जी। अच्छा ओके,
तो वो सिल्क कोसा को बनारस से मंगा के आप बुनाई बुनकरी करते हैं। जी,
तो हमारे कोई श्रोता साथी या फिर हम कभी छुरी आकर के किसी दुकान से अगर कोई साड़ी लेना चाहे कोसा की, तो कोई ऐसा विशेष दुकान है जहाँ रेट भी सही हो और सामान भी सही मिलता हो हमें, सब अगर कुछ जानकारी में आपके हो तो हमें बताएं।
बिल्कुल भैया बिल्कुल, आप आइए। अगर रेट से आपको रेट सही दाम मिलेगा और सही चीज दिलाऊंगा, अगर सामान खराब निकल गया तो वापस वहां मैं कराऊंगा, मेरी जवाबदारी है।
जी जी, मतलब आपकी जवाबदारी में बिल्कुल हम पहुंच सकते हैं बिना किसी झिझक के।
जी, कोई भी दुकान में जाइएगा, मेरा नाम लेंगे या मैं साथ रहूंगा, वो मेरे नाम से ही वो दुकानदार दे देगा सामान और सही रेट लगा के देगा वो।
वाह, ये बड़ी बात है कि सिर्फ आपके नाम लेने से ही सही रेट हमें मिल जाएगा, तो ये पहचान भी बनाना और इतना मतलब वजन अपने नाम पे रखना भी एक बड़ी बात है, जिसके आप बधाई के पात्र हैं भाई। तो चलिए इसी बधाई के साथ अब बताएं हमें कि आपकी पसंद का तीसरा गीत कौन सा है।
तीसरा गीत भैया लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है।
वाह, प्यार का सिलसिला पुराना है।
पुराना है,
बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में हम कर रहे हैं बातचीत हमारे लक्ष्मण सिंह ठाकुर मितान जी से, जो है छुरी कटघोरा से, सिल्क के संदर्भ में, रेडियो श्रोता सम्मेलन के संदर्भ में और स्वयं लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी के संदर्भ में बहुत सारी और बहुत डिटेल में जानकारी और बातचीत हमने की है। श्रोताओं, आइए अब आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को और उनसे जानते हैं उनके व्यवसाय के बारे में। तो लक्ष्मण जी,
जी भैया,
जैसा कि आपने बताया कि आप पत्रकारिता भी करते हैं।
हाँ जी जी।
तो अपने पत्रकारिता के संदर्भ में भी हमें बात बताएं।
जी,
कि आपने पत्रकारिता को क्यों चुना और पत्रकारिता में आप क्या करते हैं।
जी, क्या भैया, मैं इसमें शुरू से पढ़ाई की रायगढ़ में कर रहा था, मैं आईटीआई। उस समय मेरे को लिखने का शौक बढ़ गया, रेडियो सुनते सुनते कुछ कविता गीत गजल वहाँ पढ़ते थे, वो कुछ पत्र भेजते थे उसको पढ़ते थे, उसके बाद वो कविता कोई भेज दिया तो उसको पढ़ते थे, तो मैं सुन सुन के उसमें बढ़ते गया, वहाँ पर लिख लिख के अखबार में लोकल अखबार में देते गया, तो छपने लगा मेरा नाम सहित।
वाह, गुड।
तो कविता छपता था, कभी की कहानी छपता था, तो मेरे खुशी होती थी, तो मेरा हौसला बढ़ते गया। फिर उसके बाद फिर मैं पेपर प्रेस लाइन से जुड़ गया, समझ लीजिए।
जी जी जी।
तो नौकरी मिल गया था मेरे को।
हाँ हाँ।
लेकिन नौकरी को मैं छोड़ करके प्रेस लाइन में आया, सोच लीजिए।
अच्छा, तो कौन सी नौकरी आपने छोड़ दी भाई?
जिंदल में मेरे को अर्पेंटिस से मिल गया था, रायगढ़ में।
अच्छा,
उस समय जिंदल का ढांचा तैयार हो रहा था, समझ लीजिए, 88-89 की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
अच्छा,
तो ढांचा की तैयारी हो रही थी उस समय, मेरे को आईटीआई निकलते साथ मेरे को वहाँ अर्पेंटिस से मिल गया था। लेकिन जब मेरी लगन जो देखा मैं कि प्रेस की तरफ है करके, तो फिर प्रेस में घुस गया फिर जाके। उसके बाद फिर प्रेस में घुसने के बाद फिर आज तक नहीं निकल पाया, मेरे लिखे समाचार और अखबार लिखने का समाचार लिखने का शौक बढ़ते गया, समझ लीजिए। और अभी स्थिति ऐसी भैया कि मेरी स्थिति है, मैं सोचता हूँ कि अपने क्षेत्र के समस्याओं को आगे लाऊं, लोगों के बताऊं, लोगों के सामने में रखूं ताकि समस्या हल हो।
जी बिल्कुल,
बहुत मेरा ये सिद्धांत रहता है।
बहुत बढ़िया।
अब देखेंगे मेरे कागजो समाचार खबर आपके व्हाट्सएप पे देखेंगे, मैं लिखा भेजा हूँ।
जी बिल्कुल बिल्कुल, देखा है मैंने, देखा है
जी।
तो ये हाँ बताइए बताइए, और कोई बात है बिल्कुल जरूर बताएं जोड़े।
वही से मतलब मेरा शुरू हुआ, शौक जो शुरू हुआ तो फिर लगातार चलते जा रहा चल रहा है, समझ 35-36 साल हो गया समझ ली मेरे प्रेस से जुड़े। और आज भी मेरे को इच्छा नहीं होता छोड़ने का समझ लीजिए। जी अभी मेरे पास पत्रिका जो भी राजस्थान पत्रिका है वो मेरे हाथ में समझ लीजिए।
अच्छा
जी जी,
तो उसकी
पत्रिका। और एक बात और बता दो, कोरबा जिला जो है ऊर्जा नगरी नाम जाना जाता है।
बिल्कुल जी।
और यहाँ पर इंडस्ट्रिक नाम से आपका बालको है और SSL है कोयला खदान और NTPC ऊर्जा जहाँ बिजली बनता है और यही से मतलब बिजली बन करके सप्लाई होता है समझ लीजिए
जी।
लेकिन हम ही लोग बिजली से परेशान है समझ लीजिए।
ओ, दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई है।
बस 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 भैया जी जी,
तो किस तरह से परेशान है ये बताए
जी। बिजली से बस 8वीं चली भैया, कभी 2 घंटा बंद सुबह कभी रात 1 घंटा बंद ऐसा।
अरे तो ऐसा
यहाँ से बंद करके बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ तो पूर्ति करेंगे, यहाँ बंद कर देते हैं लोकल क्षेत्र में। कोरबा में परेशान है सब।
अरे
जी,
तो ये बड़ा मतलब विचित्र सी स्थिति है और नई बात है हमारे लिए कि जहाँ बिजली का उत्पादन है। जी जी जी
जी,
तो 12 महीने ये स्थिति रहती है।
हाँ ऐसी स्थिति रहती है भैया।
तो इस संदर्भ में आप सरकार से क्यों नहीं उनका ध्यान आकर्षित करते या उनसे बात नहीं करते उनसे?
नहीं, उनसे हमारा काम था लिखना, हम लोग लिख लिए पूछ भी लिए तो बोलते ही है, विद्युत विभाग से पूछे अधिकारी डी साहब से तो उनका बोलता है कि भाई हमारी बिजली की पूर्ति वहाँ भी करना है तो यहाँ कम करेंगे तब तो उधर भेजेंगे। और सरकार भी कहना है कि वहाँ बिजली भेजोगे तो वहाँ से पैसा आएगा तब तो इधर खर्च करेंगे।
अच्छा,
ये इन लोग का पंचायत पॉलिसी है।
मतलब ये है कि अगर विकास चाहते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका भुगतान आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा।
करना ही पड़ेगा जी जी।
मतलब कुछ पाना है तो थोड़ा खोना पड़ेगा।
खोना पड़ेगा। खैर, ये सिद्धांत है उनका। जी जी।
चलिए, खैर जो भी सरकार की नीति होती है वो हमारे तो भले के लिए ही होती है।
हाँ,
तो हम एक तरह से समझे कि हम आप हमारी इधर तो बिजली की वैसी समस्या नहीं है, तो हम ये समझे कि जो आप लोग की जो कटौती की बिजली है वो हम तक पहुँच रही है।
जी,
तो
जी।
आप जो त्याग कर रहे हैं उसका प्रतिफल है कि हम बिजली के रूप में हमें
मिल रहे हैं।
तो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। फिर तो आप सभी छुरीवासी और आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं उन सबको आज हमारे अर्पा रेडियो के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद है। और उन सभी श्रोताओं को अब ये जानकारी हो ही गई होगी कि आपके क्षेत्र में जो बिजली आ रही है वो हमारे लक्ष्मण सिंह भैया के क्षेत्र से आ रहा है ये बिजली, और उनके त्याग और बलिदान से ही इस तरह से हमें मिल रहा है।
जी,
तो पुनः धन्यवाद।
बलिदान क्या भैया, हम लोग दुखी हो जाते हैं 1 घंटे के लिए चला गया, समझ लीजिए।
हाँ नहीं, सही बात है, बिजली के नहीं रहने से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब तो होती हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है।
जी जी।
तो इसी धन्यवाद के साथ हम जानना चाहेंगे लक्ष्मण जी आपकी पसंद का चौथा गीत।
तो ये भैया भूपेंद्र लता की आवाज में है, दिल ढूंढता है फिर वही
फुर्सत
से रात दिन।
वाह, चलिए आपकी पसंद का चौथा गीत पहुंचाते हैं श्रोताओं तक।
दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
इस मधुर गीत के साथ ही श्रोताओं हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, और अंतिम पड़ाव में हम जानना चाहेंगे हमारे सप्ताह के श्रोता लक्ष्मण सिंह ठाकुर भैया जी से ये बात कि इस पूरे बातचीत के दौरान बहुत सी जानकारी हमने आपसे जानी लक्ष्मण भैया, कोई ऐसी बात रह गई हो जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुँचाना चाहें तो अंतिम पड़ाव है कार्यक्रम का, ये ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमें बताएँ।
जी भैया, मैं यही कहना चाहता हूँ भैया अर्पा रेडियो के नाम तरफ से माध्यम से श्रोताओं लोग एक साथ रहें, एकता बना के रहें, गाना सुने, बिल्कुल फरमाइश भेजें और रेडियो को उत्साह वर्धन बढ़ाएं
जी,
क्योंकि आज नहीं तो कल एक जमाना फिर रेडियो का समय आने वाला है।
जी जी जी,
जैसे पहले था वैसी आएगा एक दिन, चाहे हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन रेडियो का जमाना एक बार फिर आएगा, हमारे तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी उसको फिर सुनेंगे
जी,
क्योंकि ये नहीं है टीवी आ गया है मोबाइल आ गया तो ये रेडियो नहीं आएगा, रेडियो का जमाना फिर एक बार लौटेगा, इसलिए रेडियो से जुड़ के रहे, जो रेडियो से हमको जानकारी मिलता है वो टीवी से नहीं मिलता
जी,
अच्छी अच्छी जानकारी शिक्षा प्रद के अलावा कोई नॉलेज और आपका शरीर की बीमारी के खाने पीने का कई प्रकार की हमको जानकारी वहां से मिलती है
जी जी जी,
इसलिए रेडियो सुनना जरूरी है
जी,
और रेडियो सुनते रहे
जी,
मैं श्रोताओं से ही कहता हूँ और श्रोताओं के ही बोलूंगा कि आपसी भाईचारे के साथ रहे
जी,
कई श्रोताओं ऐसे होते भैया कि हमारा नाम आज नहीं बजा तो उसका नाम शामिल कर लिया तुरंत बोल देते, नहीं वो सब बराबर रहे, आज नहीं तो कल आपका नाम शामिल होगा, मेहनत करो
जी,
हम तो सिलोने भेजते थे भैया गाना तो उस समय तो सुनते थे सुबह 8 बजे आप ही गीत को लगाए नहीं आया तो हम दुखी नहीं होते थे, कल बजेगा
जी,
परसों शामिल होगा
जी जी,
धैर्य रखना चाहिए, सबर रखना चाहिए
जी,
कई श्रोता होते हैं कि आज हमारा नाम से, उनका कहना है कि हमारा रोज शामिल हो, नहीं सप्ताह में 2 दिन 1 दिन हो गया बहुत है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, उनका मेहनत बिल्कुल सफल होगा
जी जी,
तो ये सब आपसी भाईचारा बनाकर है, मैं तो ये कहता हूँ सभी श्रोताओं मिले, अच्छी बात है रेडियो सुनकर श्रोता बन रहे तो एक भाई परिवार की तरह समझ लीजिए
जी,
तो ये संदेश है कि वो लोग सब परिवार की तरह रहे और अच्छे से रहे और सबसे मिल के रहे
जी, बहुत अच्छा संदेश दिया लक्ष्मण जी आपने जी, और बहुत ही गहरी बात बहुत ही अच्छी बात आपने कही, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इस बात का अनुपालन जरूर करेंगे
जी भैया जी भैया,
तो आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया लक्ष्मण जी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं,
हम भी आपके आपको धन्यवाद देते भैया और आपके आभारी हैं कि आपने हमें आपको जान हमारी बातों को रखने का मौका दिया
जी,
हमारी सारी समस्याएं सारी जानकारी लिए हम श्रोताओं तक पहुंचाए, इसके लिए भी मैं आपका आभारी और आपको धन्यवाद देता हूं,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के सप्ताह के श्रोता लक्ष्मण सिंह ठाकुर ग्राम छुरी कटघोरा से, तो इसी तरह से हम हर हफ्ते एक नए श्रोता से करते रहेंगे बातचीत और आप तक पहुंचाते रहेंगे उनसे हुई हमारी बातचीत और साथ ही उनके पसंद के गीत, तो अगले हफ्ते कौन से श्रोता की बारी है इसका इंतजार करते रहिएगा और साथ ही साथ सुनते रहिएगा अर्पा रेडियो के कार्यक्रम को जिसका नाम है सप्ताह के श्रोता, तो इसी बात के साथ अब दीजिए अनुमति कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता से और स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
सप्ताह के श्रोता
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।